ओम शांति, ओम शांति। आज 5 सितंबर 2025 है और आज भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते हैं। आज के दिन सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में उनका जन्मदिन आज है। तो हमारा परम शिक्षक कौन? स्वयं भगवान। तो उनका हम सम्मान कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं मेरी याद में रहेंगे तो यही मेरा सम्मान है। बाबा की याद में निरंतर रहना, ये बाबा का सबसे बड़ा सम्मान है। और निरंतर याद से क्या होगा? कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो कर्मातीत अवस्था पाना, ब्रह्मा बाप समान बनना, ये हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मा बाप को, वो भी हमारे टीचर तो है ना, और हमारे बाबा के सब ब्राह्मण बच्चे भी टीचर है। जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो टीचर है। तो सबका सम्मान करना, क्योंकि कितना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं, भगवान का दिया हुआ ज्ञान। तो आज बाबा ने कितना सम्मान हम भगवान का करें, उनको याद करके ही करेंगे, कर्मातीत बन के करेंगे। आज दूसरा बाबा ने कहा है सरेंडर किसको कहेंगे। कई भाई बहने बहुत इच्छा व्यक्त करते हम सरेंडर हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, पर सचमुच सरेंडर किसको कहा जाता है वो आज बाबा ने बताया। भले तन से तो सरेंडर हो गए, परंतु सच्चा सरेंडर कौन हो सकता है? हाँ, कहेंगे जीते जी मर गए, सब बाबा को अर्पित किया और अब हम सरेंडर हो जाए। परंतु सचमुच सरेंडर केवल तन से नहीं होना है, पर मन बुद्धि से भी कंप्लीट होना है। तो कैसे वो बन सकते हैं वो भी आज बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 5/9/2025 है। मीठे बच्चे, अब जब बाबा के बच्चे बने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की ना। तो मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। ये सचमुच उस परम शिक्षक के लिए हमारा सम्मान है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, आज बाबा ने प्रश्न किया है, सयाने बच्चे किसको कहेंगे? अब हर एक समझता है मैं तो बहुत सयाना हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ, हाँ मैं तो बाबा का बहुत ही लाडला हूँ। अच्छी बात है ये समझना, लेकिन सयाने बच्चे जिसको बाबा सयाने कहते हैं, समझदार कहते हैं, वो किसको कहते हैं? तो सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अब देखिए वो हम कर रहे हैं, अब तक हम सयाने कहला सकेंगे। तो सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा उस पर भी अटेंशन हो, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है, वही हमारा अंत होगा ना। तो उस अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तब अंत समय में बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, ये पुरानी चमड़ी है इससे ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, यही सोचो, एक आंख में मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बस। तो बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, उनको ही सयाने बच्चे कहेंगे, यही उनका पुरुषार्थ होगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अब बाप ओम शांति, सभी कहेंगे ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से कि हम बाबा से जो हमारा प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, न हम उनसे जुदा होंगे न उल्फत यानी प्यार दिल से निकलेगा। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे हम आपके ही रहेंगे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, जो पाप सब भस्म हो जाए सब जल जाए तब कहेंगे योग अग्नि, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। और कोई उपाय नहीं पाप भस्म करने का इस समय, कोई और उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है, वही जगत का बाप है, जगत का शिक्षक है और जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना संभव है या असंभव है? असंभव है, एक भी पावन होना असंभव है। भल पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं तो उस हिसाब से पवित्र रहते हैं, लेकिन शरीर तो पतित है ना। तो कंप्लीट पावन तब कहेंगे जब आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। कहीं पूछे ना पतित और पवित्र में अंतर क्या है, पावन और पवित्र में अंतर क्या है? तो पवित्र रहना माना चलो ब्रह्मचर्य में रहते, पर पावन तो बहुत बड़ी बात है, वो तो तब होगा जब आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो। तो बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं, तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर होना चाहिए। बाबा ने आज दो करेक्शन की है, एक तो कहा कि जब शिव कहते हो तो केवल शिव नहीं को, त्रिमूर्ति शिव को, क्योंकि शिव बाबा अकेला नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ है, उनका रचयिता है, उनके द्वारा ही कार्य कराते हैं। तो जब शिव कहो तो शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है कि डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आज सो भी अल्प अभी कल्प के संगम युगे, अभी ले सकते हैं दैवी राजाई। तो क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, एक तो ये बाबा ने करेक्शन किया, केवल शिव नहीं बोलो, त्रिमूर्ति शिव बोलो। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर भी जरूर हो। पहले तो यही कहते थे ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, फिर बाबा ने करेक्शन किया, ये ऐसे नहीं कहो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ब्रह्मा का तो समझेंगे ये ब्रह्मा तो को तो भगवान मानते हैं, परंतु प्रजापिता है वो, ये जरूर लिखना है। तो बाबा कहते हैं, और दूसरी बात, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है, ब्रह्मा नाम कईयों के, हम पता नहीं कहाँ गए थे तो उसमें माता थी, तो उसने कहा कि मेरा लौकिक नाम ही ब्रह्मा है। मैंने कहा अच्छी बात है, लौकिक नाम ही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को, अब सब पत्थर बुद्धि है तो विश्व भी पत्थर हो गया ना, तो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। हम क्या क्या गालियां देते हैं कलयुगी दुनिया में, समझते भी नहीं है कि हम क्या मुख से निकाल रहे हैं। तो गालियां देते रहते हैं, बाप के लिए भी कह देते हैं, क्या गाली देते हैं बाबा को, कच्छ मच अवतार। अब कहां भगवान ऊंचे से ऊंचा, और एक कछुए में आएगा, एक मछली में आएगा, कच्छ मच अवतार। अब अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। अवतार वही होता है जो पर काया प्रवेश करे, कुछ कार्य करने के लिए आए। अब कछुआ और मछली से क्या कार्य करें, बोले वो दिखाते हैं कि कैसे कछुआ ने पार किया संसार को, मछली ने पार किया। लेकिन बाबा कहते हैं अभी कछुए में आए और ज्ञान दे, अब कछुए की भाषा कौन समझेगा, मछली की भाषा कौन समझेगा, और कैसे उद्धार करेगा। ऐसे थोड़ी है मछली की नाक पर धरती रख करके और मछली पार कर देगी दुनिया को। तो बाबा कहते हैं अवतार तो एक ही का है, वो भी अवतार किसको कहेंगे, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। मनुष्य शरीर में आकर के पावन बनाते हैं, क्योंकि पहले मनुष्यों को पवित्र बनाना है, फिर प्रकृति बाकी तो सब तो पावन बन ही जाएंगे। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती है, उनको अपना शरीर है नहीं, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, ज्ञान तो मनुष्य द्वारा ही देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है, बहुत बड़ी बहादुरी है ये। साथ में रहे हैं और फिर भी ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रहना साथ में रहकर, ये बहुत बहादुरी की बात है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, महावीर के हनुमान को कहते हैं ना, कितनी वीरता दिखाते उनकी, ये भी वीरता है, बहुत बड़ी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो, है ना। बहुत युगल बैठे होंगे जो साथ में रहकर पवित्र जीवन जीते हैं, या जो भी युगल बैठे हैं भट्टी में आए, सब हाथ उठाओ, देखो। हाँ, बहुत महावीर हो भाई, महावीरों के लिए ताली बजाओ। तो बाबा कहते हैं ये जो वीरता है, जो काम सन्यासी भी नहीं कर सकते है, वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो क्या विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व की आत्माओं के लिए ये विद्यालय है, क्योंकि स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, और कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। हाँ, कई मनुष्यों के भी मंदिर बनाते हैं, द्वापुर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। अब पतित मनुष्य का मंदिर बनाना, अब उसकी देह तो पावन नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं वो कैसे उसका ना मंदिर बना सकते हैं। द्वापुर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, और कहाँ ये पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना। ये कोई देवता थोड़ी है, अगर मनुष्यों को ऐसे बिठाए और उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा करे, बाबा कहते हैं ये कोई देवता थोड़ी है। चलो देवताओं का मंदिर बनाते हैं ये समझ की बात है, शिव का मंदिर बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मनुष्यों का मंदिर ना, बाबा कहते हैं ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा तो समझाते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। पहले नहीं था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, फिर बाबा ने करेक्शन किया तो फिर प्रजापिता लिखा, और पहले ज्योति स्वरूप भी नहीं कहते थे, ज्योतिर्लिंगम कहते थे, तो बाबा भी ज्योतिर्लिंगम कहते थे। तो हमारे जो पुराने चित्र है ना, त्रिमूर्ति झाड़, आप हिस्ट्री हॉल में देखेंगे जो लिखत है, उस लिखत में ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति बिंदु नहीं है, जाके देखना पढ़ना आप, तो ज्योतिर्लिंगम, क्योंकि बहुत पुराने चित्र है तो बाबा ने बाद में करेक्शन किया। तो बाबा उसके लिए भी समझाते हैं, बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले ये क्यों नहीं बताया, शुरू शुरू में क्यों नहीं कह दिया ज्योति बिंदु शिव परमात्मा ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे बाबा कहते अरे पहले तो पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में जो बहनें आई उनको तो कुछ ऐसे ज्ञान था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बस साक्षात्कार हुए और भाग के आई। अब उस समय बाबा ज्योति बिंदु कहते तो कहाँ समझते, ज्योतिर्लिंगम की तो भक्ति तो करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए बाबा ने शुरू में तो ज्योतिर्लिंगम ही कहा। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे, अभी भी बहुत है, जब उनको शिव का परिचय देते हैं और हम कहते हैं कि ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप को याद करना है, तो फिर कई कहते हैं हम तो लिंग की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाते उसी की पूजा करते हैं, तो वो ज्योति बिंदु अभी तक भी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं अरे पहले से ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रेस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तो फिर कई कहते हैं कि हम ज्योतिर्लिंगम में रूप में याद करें, ज्योति बिंदु तो सामने आता ही नहीं है, ज्योतिर्लिंगम ही याद आता है, तो हम कहते हैं अच्छा भले ज्योतिर्लिंगम ही सही, नहीं याद कर सकते हो ज्योति बिंदु के रूप में। तो हर एक बात का रेस्पॉन्ड पूरी रीति तुम कर सकते हो। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, कितना भी पढ़ाए तो भी वो समझता नहीं स्टूडेंट, तो टीचर भी क्या करे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे, अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। तो विचार सागर मंथन चलना चाहिए इन बातों पर। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। अभी भी शांतिवन में प्रोग्राम चल रहा है जिसमें खास गीता के ऊपर ही समझने के लिए आए, खास गीता के ऊपर कि गीता का भगवान कौन है। तो बाबा कहते हैं, तो वो आते हैं ब्रह्मा के तन पर। तो विचार सागर मंथन चलना चाहिए, गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके, वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए, काहे के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, बायोग्राफी चाहिए ना उनकी भी। कोई भी जानते नहीं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं सौ भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, शास्त्रों में है सौ भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, हजार भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है, होगी कोई शास्त्र में कहानी। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र वन में, तो हजार भुजा हाँ सौ भुजा, तो भुजाएं कौन है, बाबा के बच्चे ही हैं, वही भुजाएं हैं। यहाँ आते ही हैं पवित्र वन में, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अपूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें, मुझ पढ़ते हैं बाप का बनकर और विकर्मा जीत न बने, पाप न कटे याद की यात्रा में न रहे, तो वो क्या पद पाएंगे। कौन है ऊंच पद कौन पाने वाले, जो अगर बाबा कहते हैं कौन ऊंच पद नहीं पाएंगे, बाप का बनकर और विकर्मा जीत न बने, पाप न कटे याद की यात्रा में न रहे, तो वो क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर है, समझते ना, हम तो बाबा को सरेंडर हो गए, तो सरेंडर तो हो गए, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते, भले सरेंडर भी हो गए। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे उतना उस अनुसार कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, सरेंडर होना ही यही नहीं क्राइटेरिया है डबल सिरताज बनने की। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। तो ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं, पहले तो दास दासियां बनेंगे। सरेंडर भी किया, चलो थोड़ा हक मिला बाबा से, लेकिन पहले दास दासियां बनेंगे, फिर त्रेता के अंत में जाकर के थोड़ी राजाई मिलेगी। तो पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं, अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है, दास दासी बनने से सरेंडर हुए तो बाबा का अधिकार लिया लेकिन पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया, तो अंत में थोड़ा सा मिल जाएगा, परंतु घर गृहस्थ में रहने वाले इतना पुरुषार्थ करते हैं, कल तो बाबा ने कहा बांधेलिया जितना याद करती और कोई नहीं करते, तो वो तो कितना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, दास दासियां बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी जुड़ सकेंगे। चलो दास दासी दासी बनी दास बना तो श्री कृष्ण को अब झूले पर तो बिठाएगी, झूला झुलवाएगी, उसके साथ थोड़ी झूले पर बैठ सकेगी। तो दास दासी कभी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगे, ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए, कितने राजाएं बन जाए, यहां बस सरेंडर हो गया हम राजा बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, तो ढेर राजाएं बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य बात है याद की यात्रा, जो अच्छी रीति याद में रहते उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, आज शरीर किसी ने छोड़ा तो सब उनके मित्र संबंधी रोने लग पड़ते हैं। अब सत्युग की बातें ही भूल गए हैं, सत्युग में वहां कोई रोता नहीं, वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं, क्या मिसाल देते बाबा, जैसे सर्प का मिसाल है, सर्प भी अपनी जो चमड़ी उतार देता है और नई चमड़ी उसको मिलती है तो वो चला जाता है, वो थोड़ी रोता है कि मैं अभी पुरानी चमड़ी छोड़ा हूँ, उसे तो मोह त्याग हो जाता उसका। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं, सयाने बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं बाप की याद में शरीर छोड़ें फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं बाबा भगवान से। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, सरेंडर हो गए, चलो जीते जी मर गए, बस बाबा के पूर्ण बच्चे बन गए, जीते जी मरे तो हो, परंतु जब की आत्मा पवित्र भी बने ना, ऐसे नहीं बस राम जीते जी मर गए पर आत्मा तो भी पवित्र बनी नहीं, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहां कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, नहीं समझते हैं, बस अभी बाबा के पास जाएं, कर्मातीत अवस्था बन जाए हम पुराना शरीर छोड़ें। परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा, अभी तक अगर शरीर में है माना कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, अगर कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा, बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, कर्मातीत अवस्था के नजदीक आएंगे पुराने शरीर से नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तभी तो वो सहज छोड़ता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, ब्रह्मा बाबा अपनी नई खाल को सदा याद करते थे, हाँ ब्रह्मा बाबा जब मुरली बाबा की चलती थी तो श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट भी चलता था, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट भी चलता था, अभी भी वो हिस्ट्री हॉल में है, तो बाबा देखकर कहते मैं ये विष्णु बनूंगा, मैं ये विष्णु बनूंगा, तो जैसे बाबा को दिखाई देता था सत्युगी नया चोला जैसे खूंटी पर अटका हुआ, तो बाबा को इतना नशा था। तो तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी अवस्था ऐसी होगी, बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी, एक तरफ हम कर्मातीत अवस्था को पाते जाएंगे और वहां दूसरी ओर दुनिया में लड़ाई की पूरी तैयारी हो जाएगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर है। क्यों नहीं विनाश हो रहा है? क्योंकि अभी तक बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। तो तुम्हारा विनाश का आधार क्या है? बाबा कहते हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबर वार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, जो बस उठते बैठते बाबा को याद करते ही रहेंगे और कुछ उनको सुध-बुध रहेगी नहीं। ऐसे भी बच्चे निकलेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छेड़नी है। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था 60s में, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत हथियार बना दिए थे, रशिया ने भी बहुत हथियार बना दिए थे, आपस में एक दो के जैसे दुश्मन बनते जा रहे थे और होड़ चली थी हथियार बनाने की और एक दो को धमकी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, और अखबारों में बहुत आता था, कभी भी युद्ध छिड़ जाए, और कभी भी युद्ध छिड़ जाए तो ये विश्व युद्ध भी बन के रूप का रूप भी ले सकता है। तो बाबा कहते अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छेड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, फिर कोई रोक भी नहीं सकेगा। जब बड़ी लड़ाई बना, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर आया तो फिर कोई रोक नहीं सकेगा, फिर तो सब खत्म। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो बे अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे? दिन भर दे अभिमान में रहते हैं, यही दुनिया याद रहती है, तो बाबा कहते हैं वो क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, नहीं समझ रहे हो कि कैसे स्थिति आनी है। पिछाड़ी में तुम बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अब बाप कहते हैं अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे, नहीं समझेंगे तो अंत में भी कहां समझेंगे, तो बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। तो बाप कहते हैं अपनी पत मत गवाओ, पत सिंधी शब्द है, पत माना इज्जत, आपकी तो अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मां में कम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। कब आई बाबा की याद? जब अपने को आत्मा बिंदी समझे। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है, बिना अविनाशी पाठ है ये, वो कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है, ये पाठ जो मेरे अंदर नूंधा हुआ आत्मा में, ये कभी न घिसने वाला है न मिटने वाला है। बाबा कहते हैं ये समझना भी मासी का घर नहीं है, इसलिए कई कहते हैं ना अगले कल्प में ऐसा नहीं चाहिए, अगले कल्प में ऐसा नहीं चाहिए, बाबा कहते ऐसे हो ही नहीं सकता कि अगले कल्प में ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत कम समझते हैं, तो ऐसे समझना कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ फिर होना है, तो बाबा कहते हैं ये समझना भी मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए कोई को समझा भी नहीं सकते हैं। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको क्या कर दिया है, देह अभिमान ने सबको मार डाला है, क्योंकि देह ही समझ रही है ना। तो जैसे ये शरीर तो मुर्दा है, जब तक आत्मा न है तो आत्मा समझते ही नहीं है, तो जैसे शरीर को मार डाला है ना, देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं, सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। जानवर मिसल मच्छरों सदृश तो अंत में जाएंगे, लेकिन जानवर मिसल बाबा कहते पक्षी मिसल ऐसे मर जाते जैसे वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, कई मनुष्य दुखी होते हैं ना तो कैसे बस मर जाऊं और मर जाऊं कह करके जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ अपने आप को मार डालते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं, जाकर के हत्या करना अपनी सुसाइड करना ये अपनी अकाले मृत्यु खुद ही लाते हैं, क्योंकि अभी उनका समय नहीं है मरने का और खुद को मार डालते हैं। तो बाबा कहते हैं वो अकाले मृत्यु अपनी खुद ही लाते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आए न बने, इसमें मेहनत है। दृष्टि कभी भी बुरी न ईविल न बने, बाबा कहते इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं, थोड़ी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, मानो आपके सेंटर पर अकेली अकेली बहने रहती है, कोई बदमाश अंदर घुस आए तो क्या करेंगी टीचर बहने, देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई बदमाश अंदर घुस आए हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। है इतनी हिम्मत टीचर्स में, या चूहा आया तो भी डर जाते मनुष्य तो दूर, चूहा आया तो भी डर जाते, कॉकरोच आया तो भी डर जाते, तो बदमाश आ जाए तो क्या करेंगे तो बाबा कहते हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग का ये द्वार खोलते हैं, शिव शक्तियां स्वर्ग का द्वार खोलने वाली और चूहे से डरती है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम बाला है, शिव शक्तियों का नाम बहुत बाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी तो चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। जगत चूहे से डरते कॉकरोच से डरते तो शिव शक्ति थोड़ी कहेंगे, और उस समय शिव बाबा की याद भी नहीं होगी। तो बाबा कहते फिर शिव शक्ति जब याद रही तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा, सीधी बात बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, ये पढ़ाई चल रही है ये याद की यात्रा नहीं है, पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और दूसरा पवित्र बनो, तीसरा दैवी गुण धारण करो और चौथा चारों सब्जेक्ट्स। हाँ, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, हाँ रोज मुरली भी सुनो, ज्ञान योग दैवी गुण भी धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो सर्विस भी करो। तो चारों सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना है, कल्याणकारी जरूर बनना है। तो ज्ञान योग धारणा अपने लिए है, फिर सर्विस में ये तीनों लगाना है, ज्ञान योग धारणा तब कहेंगे सर्विस। तो बाबा कहते हैं कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सदा याद रहे। क्या याद रहे सदा? कि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से क्या होगा? इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद, सरेंडर होने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न स्थिति जब होगी क्या होगा? निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी है, विघ्न कोई नहीं आया, बहुत काल से निर्विघ्न है, कोई न समस्या न विघ्न, उड़ते रहते हैं बाबा की याद में, डबल लाइट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा क्या होगा उसको? बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। अब ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, निर्विघ्न स्थिति सदा कैसे रहे। विघ्न तो आएंगे लेकिन हम विघ्नों को दूर से भगा दें, विघ्न आने ही नहीं दे, पहले से ही हम सावधान हो जाएं, आदि मध्य अंत सोचकर। तो बाबा कहते तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। दुआएं प्राप्त करने का साधन बाबा बताते हैं, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, यही है और शुभ भावना, तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। अव्यक्तिशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत योग माना शांति की शक्ति, योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे। शांति की शक्ति से क्या क्या होगा? स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है शांति की शक्ति। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख से कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। प्रकृति को बदलना है तो योग बल, मनसा सेवा वही चाहिए, तब प्रकृति बदल सकेंगे। मनुष्यों को तो चलो समझा करके उनको बदलने की ताकत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा का बेहद का घर है, बाबा के इतने बेहद के बच्चे हैं, सारा विश्व बाबा का है सर। कई बच्चे फिर रोज समाचार सुनते, किसने शरीर छोड़ा, किसने शरीर छोड़ा, तो वो समाचार मिलता रहता है। कईयों की लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा, कईयों के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, तो वो भी समाचार आते रहते हैं। तो आज ये समाचार आया है कि हमारे पांडव भवन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दिनकर भाई के लौकिक भाभी माता जी ने कल अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। भाभी है, अच्छा, लौकिक भाभी चंद्रभागा माता जी ने कल अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। वे 50 वर्षों से ज्ञान में चल रही थी, उनकी आयु 78 वर्ष थी। वे महाराष्ट्र सतारा से आए। माता जी को योग में हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे दिनकर भाई को तो सब जानते हैं ना, यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमेशा बैठे रहते हैं, सबकी बहुत प्यार से सेवा करते हैं, तो उनकी लौकिक भाभी। तो आत्माएं रोज कुछ न कुछ समाचार सुनते ही रहते हैं। चलो हम उस आत्मा को भी योगदान देंगे। और उसके बाद शशि बहन जी आएंगे, और जो भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं वो सब बैठे रहेंगे, उनको आज बाबा के घर से सौगात मिलेगी। जो सेवाधारी भाई बहने, जो पटना सब जोन के जो भाई बहने जो सेवा के लिए खास आए हैं वो भी बैठेंगे, क्योंकि आपको भी आज ही सौगात मिलेगी। जो मधुबन में अलग से सेवाधारी है वो नहीं, जो केवल पटना सब जोन के साथ में भट्टी वालों के साथ में आए हुए सेवादारी है वो यहाँ ही बैठेंगे। अगर कहीं सेवा में है तो यहाँ आ जाए, और अभी योग के बाद शशि बहन आपको सौगात देगी। कोई भी भट्टी वाले भाई बहने उठेंगे नहीं। ओम शांति।